सभी मंगलाचरण का दशा स्वागत करें। मंगलमय दिन राज को तब उस कार्य के अनुरूप पुरस्कार करेगा। अब कोई भी प्रश्न करेगा कि हमको क्या पता है कौन सा प्रसाद होना है, कल सम्यक होना है कि नहीं होना है, हमें थोड़ी पता है। तो हम काय का प्रसाद करें, सम्यक का करें कि निष्काम का करें? भैया सुनना ध्यान से बहुत मार्मिक रहस्य है, इसके लिए पता होने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो ये बाल सफेद, काले से सफेद होते हैं तो इसमें भी परमाणुओं का पुरुषार्थ है क्या? उसमें भी उन परमाणुओं का पुरुषार्थ है, लेकिन क्या बालों को पता रहता है कब कब कौन सा मेरे को सफेद होना है? तो जड़ता में ही पुरुषार्थ करता है ना उनका, बिना ज्ञान हुए, बिना पता हुए, बुद्धि पूर्वक प्रयत्न हुए बिना। जब उनकी जिस पर्याय का क्रम आता है तब उस पर उस पर्याय पुरुषार्थ हो जाता है। अपन रोटी बनाते हैं तो रोटी जब कच्ची रहती है तो उसके मान लीजिए आधा मिनट बाद वो तवे पर रख के सिकने वाली है, ठीक है ना? तो रोटी को पता रहता है परमाणु अब मेरा सिकने का काल लगी आ गई है, इसलिए अब मैं उनका प्रसाद करूँ, और नहीं करेगी तो वो कच्ची ही रह जाएगी, तुम चाहे इनमें जला दो तो भी। बोलो, कहने का आशय ये है कि ये जो स्वचलित व्यवस्था है ऑटोमेटिक, जो परिणाम होने वाला है उस परिणाम के अनुरूप ही परिणमन होता है, विकल्प चाहे कुछ भी हो। और मजे की बात यह है कि विकल्प भी उसकी योग्यता के, विकल्प की योग्यता के अनुसार, उस पर्याय की योग्यता के अनुसार विकल्प भी हुए बिना नहीं रहते। अब उन विकल्पों के अनुसार कार्य होगा कि नहीं होगा वो कार्य की योग्यता पर डिपेंड है, यानी कितना व्यवस्थित है ये वस्तुओं की परिणमन व्यवस्था है। इसी श्रृंखला में एक जोड़ा है 3233 नंबर का, ये है नए 341 पेज पर आया, पुरस्कार में और दैव में काल और अकाल की जो चर्चा कर सके, कल की थी काल और अकाल की। जगत में एक प्रश्न दार्शनिक जगत में फिलोसफी में, प्राय सभी फिलोसफी में ये चर्चा बहुत होती है कि भाग्य प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है, किसके दुनिया में किसकी महत्ता है, भाग्य के अनुसार काम होगा कि हमारे पुरुषार्थ के अनुसार काम होगा। और मेरे ख्याल से आपकी मीमांसा में एकांत दैव नय और एकांत पुरुषार्थ नय, दैव माने भाग्य, इन दोनों का खंडन किया है आपकी मीमांसा में। यहाँ थोड़ा दूसरे संदर्भ में अपन बात करेंगे। भाग्यवादी कहता है भैया तुम चाहे कितने प्रयत्न करो लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो ही होगा। एक भजन गीत भी ऐसा वो जो पहले बहुत अच्छी देश रखती थी, एक गानों की वो रिकॉर्डिंग आज चलती थी, टैक्सीज करके कोई गायक है उनकी, जिनका वो मैं गीत गाता हूँ ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम है। तो उनके ही है, कोई लाभ करे चतुराई दे, कर्म गति कार्य नहीं करे शायद कर, तुम कितनी चतुराई कर लो लेकिन जो भी होने वाला है वो कर्म गति के अनुसार होने वाला है। कर्म गति कहो, भाग्य कहो, अन्य मति में तो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होता है। कोई कोई ईश्वर को नहीं मानते तो वो जीव के स्वयं को भाग्य को मानते। और दूसरी तरफ ऐसे भी वाक्य जगत में ही बहुत आते हैं कि न रहो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो पुरुषार्थ करो। भाग्य का लिखना भी तो हमारे पुरुषार्थ के अधीन है क्या? भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, वो लाल साहब नहीं थे जो ब्रिटेन से भारत आए थे और जिनके स्वागत में ये गीत रचा गया था, आपको मालूम नहीं भाई, जनगण मन अधिनायक जया है किंग जॉर्ज, अच्छा तो इसलिए तो कई लोग उसका विरोध करते हैं, जो भारत मातृ विधाता तो विरोध करने की क्या जरूरत है, मातृ विधाता हम ही बन गए। लोकतंत्र में जनता पूज्य होती है, जनता ही सरकार चुनती है, वो ही मातृ विधाता है। तो जन जन का तुम अर्थ बदल दो ना अपने दिमाग में, बीच में क्या प्रॉब्लम है, है? तो हम अपना भाग्य स्वयं बनाते, कोई ईश्वर या दूसरा नहीं बनाता है। तो हमारा जो भाग्य है वो हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। जैसे मनुष्य पर्याय हमको मिली भाग्य से मिलेगी पुरुषार्थ से मिली, बड़ा मजेदार है इस प्रश्न का उत्तर। क्या क्या पूछा, मनुष्य पर्याय जो अपने को मिली है वो भाग्य से मिली है कि पुरुषार्थ से मिली? डायरेक्ट देखो सीधा साक्षात कारण तो भाग्य है। मनुष्य गति स्नान कर्म का उदय आने वाला था उस निमित्त से, और कौन माता पिता हमारे माता पिता बनेंगे इनके निमित्त से हमें मनुष्य पर्याय मिलने वाली होगी, वो भी क्रमबद्ध में लगती है। उन माता पिता को समझ लो उनका जो मनुष्य गति के अनुसार विचारी परिणाम होता है वो हुआ, और जीव द्रव्य जो है वो उस निमित्त से गर्भ में आ गया, तो हमको किस्मत से मिल गई है, सोच के थोड़ी ऐसे परिणाम किए हो। लेकिन जिन भावों से ये मनुष्य पर्याय मिली है वो भाव किसने किए? मनुष्य आयु नाम करने आयु बनने लायक जो है अल्पारम्भ परिग्रतम ये है, जो सब स्वभाव की सरलता कोमलता ऐसे परिणाम वो जीवन करता है ना। तो जीव अपने परिणामों में परिणमता है तो उसका पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता है? तो ये से पर्याय भी जीव ने अपने पुरुषार्थ से किया। देखो निगोद से लेके वो भरत चक्रवर्ती के 923 के 27 है वे पुत्र जो है सीधे मनुष्य पर्याय में आए, तो भाग्य से आए कि पुरुषार्थ से आए? कर्म की अपेक्षा देखो तो भाग्य से आए, लेकिन वो उनको मनुष्य आयु बंधी कैसे? आश्चर्य की बात है कि एक इंद्री में रहने वाला जीव भी ऐसे परिणाम उनके हो गए कि उन्हें संगी पंचेंद्री पना और मनुष्य आयु और शीर्षण करके कुल में और चक्रवर्ती के पुत्र होने का ऐसे परिणाम हो गए। वो परिणाम बिना पुरुषार्थ के तो नहीं हुए होंगे। इससे एक बात समझ लेना चाहिए, आज मैं इस थोड़ा अलग एंगल से ये बात ध्यान रख रहा हूँ, उन्हें जो पुरुषार्थ किया या उन्हें जो पुरुषार्थ हुआ किनको, वो भरत चक्रवर्ती के पुत्रों को, वो प्लानिंग करके और सोच सोच के और बुद्धि पूर्वक नहीं हुआ। ऐसे भाई साहब बुद्धि पूर्वक की बहुत बढ़िया व्याख्या कर रहे थे, ज्ञान की अपेक्षा श्रद्धा की अपेक्षा, तो उनने कोई प्लानिंग की होगी यार अपन ऐसा करो, जानते ही नहीं कि क्या कर्म होता है, क्या चक्रवर्ती होता है, क्या मनुष्य पर्याय होती है। अरे सोचने की जिसको शक्ति नहीं है, कौमों में है जो कौमों में असंगी पंचेंद्री जीव जी क्या पोजिशन है कौमों में, और संगी पंचेंद्री मिथ्यादृष्टि जी क्या पोजिशन है नशे, मिथ्यादृष्टि नशे में रहता है और असंगी तक चार इंद्री असंगी के पंचेंद्री असंगी मन जिसको नहीं है वो कौमों में कोई बल है तो कोई विचार नहीं कुछ नहीं, बस भोग रहा है बुद्धि पूर्वक जो कुछ भी है। तो कहने का इससे ये निष्कर्ष निकला कि पुरुषार्थ भी बिना हमारे सोचे, बिना हमारी अकल लगाए, बिना हमारी इच्छा और प्रयत्नों के जो कार्य होने वाला है उस कार्य के अनुरूप पुरुषार्थ भी सहज होता है। ये निष्कर्ष निकला ही नहीं निकला, बता मुझे गलती हो, कोई आप लोगों को डिसएग्रीमेंट हो है, नहीं आप सहमत हो गए तो चिट्ठी भेजना, जो मैं अपनी चिट्ठी तो मैं डील कर ही दूंगा रजनी भाई है, भले आप थक जाओ 6 बजे से बैठोगे 6:15 बजे से 8:30 बजे तक, लेकिन मैं उसका तो डील कर ही दूंगा। उनने कैसा पुरुषार्थ तो किया था, वो परिणाम बिना पुरुषार्थ से नहीं हुआ विरोध में रहने वाले जीवों। अपन अपनी ले लो, अपन पिछले भाव में कहाँ से अपने को पता नहीं है, अपने के प्लानिंग करके हम हिंदुस्तान में आ गए हैं और फिर गुरुदेव का समागम मिल जा रहे हैं। ऐसे कर्म सीधा डायरेक्ट देखो तो कर्मोदय के अनुसार है, एक कर्मोदय परिणाम से बनता है, वो परिणाम जीव पुरुषार्थ से करता है। इसलिए दोनों में चुनाव का, च्वाइस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाग्य या पुरुषार्थ, ऐसा नहीं होता। भाग्य और पुरुषार्थ, क्या परिस्थिति क्या है, दो में से एक नहीं। भाग्य के पुरुषार्थ आप किसको वोट दोगे, ऐसा नहीं, भाग्य और पुरुषार्थ। समझ में आया ना सभी भाई? लेकिन इसमें थोड़ा लौकिक दृष्टि से भी उदाहरण देकर के अलग अलग समझाया है, मैं इसको पढ़ता हूँ। आए ना इसमें 32 पेजी में है आत्मद्रव्य, इसमें पुरस्कार बोला है, ऐसे पुरस्कार को ऐसा लगता है जैसे इनाम दे रहे हुए है। देखो व्याकरण में कोई शब्द या भाव कोई बचने तो कार शब्द लगाते हैं, जैसे गकार ककार, समझ में आया ना? व्याकरण की एक पद्धति ऐसी है और उस शब्द के साथ में एक कार लगा के बोलने पुरस्कार, यानी पुरस्कार से है वास्तव में, पुरस्कार से जिसे पुरस्कार द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु सत्ता प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषार्थवादी के समान यत्न साध्य सिद्धि वाला है। क्या एक आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वो अपनी कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करे? लोक में भी ये हम संस्कृत में वो पढ़ते थे सूक्तियां, उद्यमे ही सिद्धियंती कार्याणि न मनोरथ है, सरल है संस्कृत। क्या उद्यमेन ही सिद्धियंति कार्याणि न मनोरथे, कार्य की सिद्धि उद्यम से यानी प्रयत्न से होती है, मन में सोचने से, मन के लड्डू खाने से नहीं होती। और इसका उदाहरण नहीं सुप्त सिंह प्रतिशंति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण बाहर भी कर रहा है, साहब का दरवाजा मुंह का खुले, उन्हें जमाई आ जाए हैं और मैं प्रवेश कर जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण दौड़ के नहीं आ जाता, बल्कि शेर को हिरण के पीछे दौड़ना पड़ता है, नहीं? ये गाय का उदाहरण है, ये शेर वाला उदाहरण पुरुषार्थ का, यत्न सिद्धि का, समझ में आया? तो जो परिस्थिति है, नींबू का वृक्ष का नींबू का झाड़ लगाओगे, उसकी सिंचाई करोगे, उसकी संभाल करोगे, जो भी उसको संभालना पड़ता होगा जरा ज्यादा, या फिर वो मधु सत्ता जो है मधुमक्खियों ने तो बना लिया, लेकिन आपको कंबल ओढ़ के ताकि वो आपके ऊपर बैठ नहीं जाए, और क्या बोलते हैं सावधानी से हिंसा का महापाप परिणाम करते हुए, क्या उनको घर से बेघर करते हुए, ये जितने जो तूफान आता है और लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बाहर आती है और गुजर जाते हैं, इधर मकड़ी के जाले हटाने पड़ते हैं, मधु छत्ता हटाना पड़ता है, ऐसे महान कार्यों का जो फल है, है? ये महान हिंसा का सफल है, समझ लो हिंसा का ऐसा है भैया। यहाँ तो हमें उस चरणायुग की शैली में बात नहीं करें, यहाँ तो कार्य कारण व्यवस्था के वो पुरुषार्थवादी के समान यत्न साध्य सिद्धि वाला है, और दैव नैसे जिसे पुरुषार्थवादी द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता प्राप्त हुआ, उसमें जिसे बिना प्रयत्न के अचानक माणिक्य प्राप्त होगा, छत्ता तोड़ा और छत्ते में एक मन रखा था, तो उसके लिए तो उसने कोई प्रयत्न किया नहीं है। मेरठ की एक ऐसी घटना है, जिस मंदिर में हम अभी पिछले अष्टमी का में गए थे अषाढ़ में, और वहाँ पे एक मंदिर है तो समाज का पंचायती, लेकिन अपने कागज में मुख्य भाई स्वाध्याय करते हैं, संचालित करते हैं, वहाँ एक देवी बनी है और एक ब्रह्मचारी जी की फोटो लगी उस देवी के पास में, उसका नाम का नाम है बाबा लाल नंदा। तो उनकी ये घटना थी कि वो वृद्धावस्था में उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी और वो बैठ के मंदिर देवी की हैबिट तो होती है ना, तो हैबिट के अनुसार वो मंदिर जाते थे और वहाँ बैठ के अपने जाप समाहित करते थे। तो माला फेर रहे थे, अचानक माला टूट गई और उसके जो दाने हैं वे गिर गए। तो उनको ये संकल्प आया कि मैं ऐसे ऐसे करके सारे दाने इकट्ठे कर लूँ। तो वो दाने इकट्ठे कर रहे थे कि अचानक देवी जो थी लकड़ी की देवी, उससे उनका माथा टकरा गया। तो टकराने से खून निकला, तो जो भी विकार वाला खून जमा हुआ था वो निकल गया और उनके आंखों की ज्योति बात आया। ऐसा बहुत होता है, बहुत ऐसे रेयर के छोटे भी सुनने में तो ऐसे आते ही हैं इस तरह के। तो उन्हें क्या प्रयत्न किया उसके लिए? उसके लिए तो कोई प्रयत्न नहीं किया था ना, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। पहले से मालूम होता है खून जमाए तो पहले ही निकलवा देते। ये सही घटना है, मैंने सन्मत संदेश में पढ़ा था और जब मैं मेयर गया तो मैंने उनसे पूछा गया ऐसी बात है, मुझे यही मंदिर है जो गौरव जी की तस्वीर लगी, ऐसा बताया। इसी तरह आप भी यही जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से खेत खरीदा है और खेत जोत रहा था, अब जोतते तो प्रयत्न काय के लिए कर रहा था फसल के लिए, लेकिन उसमें हल चलाते चलाते जमीन में से झंडा निकल आया, उसमें सोने की मोहरें निकल आई, तो वो प्रयत्न से मिली के भाग उसे नहीं। तो डायरेक्ट कनेक्शन देखो तो भाग उसे ही है, उसने उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था। अगर अपन इसको और अधिक व्यवस्थित आत्महित के संदर्भ में समझना चाहें, सुनना ध्यान से भाई, हमारे अरुण जी तो बताते रहते सोना नहीं सोना नहीं। उनको दिखते होंगे काम में है। तो तो डायरेक्ट आत्महित के हिसाब से देखें तो बारह संयोग जो है उसमें वर्तमान का पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करता। जो कर्म बंधे थे वो बंधते समय जो परिणाम थे वे परिणाम हो गए और कर्म बन गए, वो बात तो क्लोज फाइल हो गए। तो उस परिणामों का भी कुछ नहीं कर सकते और कर्मों का भी कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान का ये जो पुरुषार्थ और भाग्य का संघर्ष है लोगों के दिमाग में, तो पूर्व पुरुषार्थ की बात नहीं है जिससे कर्म बंधे हो, समझ में आया ना। ये तो वर्तमान में हमारे प्रयत्नों से पैसा आता है कि नहीं, एक ये सवाल है। हम कोशिश करें तो व्यापार में सफल हो सकते कि नहीं, हम कोशिश करें तो प्रधानमंत्री बन सकते कि नहीं, जब ये चाय वाला बन सकता है तो डायमंड वाला नहीं बन सकता है, कपड़े वाला नहीं बन सकता, उसका नहीं चाहिए है। तो हमारे प्रयत्नों से बाह्य अनुकूलताएं मिलती है क्या? उसका जवाब देते कि भैया बाह्य अनुकूलताएं आपके प्रयत्नों से नहीं। तो पुरुषार्थ की कोई जगह है दुनिया में? देखो संयोग वियोग में तो पुरुषार्थ नहीं करेगा, सुखी दुखी होने में पुरुषार्थ करेगा। इससे पहले तुमने क्या बोला है भाई, संयोग शरीर में रोग आएगा कि नहीं आएगा, कैंसर होगा कि नहीं होगा, आंखों की ज्योति क्षीण होगी कि नहीं होगी, बुढ़ापे में गर्दन हिलेगी और वो लकड़ी के चलना पड़ेगा और कमर झुकेगी, ये सब होगा कि नहीं होगा? बहुत से तो वो अपने डॉक्टर चंदू भाई थे जो 90 साल की उम्र में भी कार चला करके मंदिर आते थे रात को, 90 वर्ष की उम्र डॉक्टर चंदू भाई यहाँ भी आए थे, अहमदाबाद की 90 साल की उम्र में यहाँ भी आए थे देवदाई है। तो बहुत से लोग इसकी बड़ी उम्र में भी बिल्कुल फिट रहते हैं और बहुत से लोग जो है जैसे अभी तो 60 को टच नहीं किया है और गीला हो जाता है शरीर, समझ में आया। ये हमारे हाथ में नहीं है, आप सवेरे से जिम जाओगे और मेहनत करोगे और प्रयत्न करोगे और सूर्य नमस्कार करो चंद्र नमस्कार करो कुछ भी करो, वो अपने मन का संकल्प विकल्प है। वास्तव में शरीर की परिणति साका असाका के हृदय के आदमी है, वो उसमें हमारे वर्तमान का प्रकार अखिंचित है। बोले फिर कहते निमित्त अपेक्षित कर है तो हमारा जो प्रसाद जैसे हम कहते हैं वो शरीर के लिए निमित्त ही तो है क्या। हम जो जिनका परिणाम कर रहे हैं वो परिणाम एक्सरसाइज का परिणाम व्यायाम का भाव वो शरीर की अवस्था के लिए निमित्त ही तो है, है? अनुकूल बाह्य पदार्थ उसमें अपेक्षित करे कुछ नहीं करे। लेकिन जब रोग हो जाए तो हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे उसे अपना मानेंगे कि भेद ज्ञान करेंगे, समता भाव रखेंगे कि आकुलता करेंगे, और आकुलता भी करेंगे तो तीव्र होगी कि मंद होगी, राग तीव्र होगा कि मंद होगा, ये हमारे तत्कालीन पुरुषार्थ पर डिपेंड है। और वो पुरुषार्थ भी सहज होगा, घबराना नहीं, सोच सोच के नहीं होगा प्लानिंग से, लेकिन उसके लिए भेद ज्ञान का अभ्यास, भेद ज्ञान का प्रयत्न, ये सब बातें सही है, ये इसका सार है। अब इसमें यही देखते पॉइंट है। हाँ बिल्कुल। अब देखो बुद्धि पूर्वक तो अपने को सब समाना और सच में चिंतन में रखिए, बाकी सब बूझा उतार को दिमाग में, कर्म समय होगा कि नहीं होगा, कि सब होगा कि एक भाव में होगा कि नहीं होगा, कि मुक्ति है कि नहीं, कुछ नहीं। सब तो माने भगवान आत्मा ज्ञान आनंद चैतन्य मात्र वस्तु वो मैं हूँ, इसमें सारी सारी समझ लो, इसमें समझ जाती है सब बातें, आगे मैं लिखा जाती। भगवान आत्मा की दुखों से मुक्ति यत्न साध्य है या अयत्न साध्य, इस प्रश्न का उत्तर इन नयों के द्वारा दिया गया है। दुखों से मुक्ति की बात, दुखों से मुक्ति को साध्य की मात्रा में क्या बोलेंगे, कौन सा तत्व होगा दुखों से मुक्ति, कौन सा तत्व कहलाएगा, मोक्ष तत्व ना, परिपूर्ण मुक्ति है। भगवान आत्मा में अंतर्मुखी पुरुषार्थ द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता को पुरुषकार धर्म कहते हैं। ये अंतर्मुख नियम कांति अंतर्मुखाकार अंतर्मुख प्रगति में जैसी चिदानंद रस अमृत धार है, तो ये तो जीव का तत्कालीन पुरुषार्थ, उस समय वो पुरुषार्थ करता है, और उसी समय ध्यान देना उसमें कर्म क्षय का नैमित्तिक कार्य होने की योग्यता होती है। कर्म की क्षय के निमित्त से जीव में नैमित्तिक कार्य, नैमित्तिक तो जीव में होगा ना, उपादान का उपाधि और निमित्त का नैमित्तिक, तो कर्म का क्षय है निमित्त, तो इधर स्थायी भाव चाहे वो समित का हो चाहे का हो वो नैमित्तिक, तो उसे दैव धर्म कहते हैं, मोक्ष में ही भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का योगदान है। भाग्य माने कर्म की अवस्था, जो कर्म तो दिखता नहीं अपने को, तो अदृश्य है ना, इसलिए उसको भाग्य में लेते हैं, भाग्य में क्या लिखा है, इसका मतलब कर्म कौन से हमारे बने हैं और कौन से उदय में आ रहे हैं, वो सब भाग्य भाग्य कहलाए, किस्मत बोलो भाग्य बोलो है, और हम जो प्रयत्न करते हैं उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। तो इस तरह इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान पुरस्कार में और गैर में है। यद्यपि यहाँ इन दोनों धर्मों को अलग अलग उदाहरणों से इष्ट संयोग के संदर्भ में समझाया गया है, भाई एक एक चीज ध्यान से सुनना बहुत है। एक मधु छत्ता यानी शहद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और उसी को उसमें कोई मणि रत्न मिल गया। पुराणों में ऐसे बहुत घटनाएं आती हैं इस प्रकार की सब। हाँ तो ये अलग अलग उदाहरण है और इष्ट संयोग के संदर्भ में अटका हुआ है। अब भूकंप आए और मकान गिर जाए तो एक यूनिट तो भाग्य से उतर है, इसके इसलिए भाग्य के आगे दो उपसर्ग लगाए जाते हैं, एक दू और एक सू, तो दू से बनता है दुर्भाग्य और सू से बनता है सौभाग्य, तो अच्छे और बुरे के भेद इसमें हो जाता है। सिद्धांत में एक ही कार्य में दोनों में घटित होते हैं, कोई काम पुरुषार्थ से होता है कोई काम भाग्य से होता है, ऐसा नहीं, समित पुरुषार्थ से होता है भाग्य से होता है। अरे भाग्य क्या करेगा, प्रसाद का होना, जो कर्म का उत्सव है ना दर्शन होने का, वो ही भाग्य है। यहाँ ये लिया है, समझ में आया? दर्शन होने का उत्सव है, कई उत्सव है, वो भाग्य में जाएगा और उस समय जीव के जो परिणाम है वो प्रसाद में जाएगा। और जो बारीक विश्लेषण करना हो तो जीव के परिणाम है वो होनहार भविष्यता में जाएंगे, और उसमें वीर गुण का जो आप वीर शक्ति पढ़ रहे हैं, वीर शक्ति का परिणाम है वो प्रसाद में जाएंगे। तो छपथ श्रेणी के प्रसाद से केवल ज्ञान होता है, ऐसा कहना पुरस्कार में का कथन है। और ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है, ये दैवी का कथन हुआ। इसमें मैंने गुरुदेव का एक कोटेशन दिया है, नए प्रज्ञापन पेज नंबर 215-16 गुजराती में है, देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं। किसी को प्रसाद से मुक्ति प्राप्त हो और किसी को भाग्य से, दैव माने भाग्य, इस प्रकार भिन्न भिन्न आत्माओं की बात नहीं है। प्रत्येक आत्मा में ये दोनों घर में एक साथ रहते हैं, अतः दैव के साथ अन्य नयों की विवक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी दैव का ज्ञान सच्चा कहा जाएगा। हाँ? उस समय जो भी संयोग संयोग पत्र में तो जीव का प्रसाद चलते ही नहीं, हम प्रसाद करें प्रसाद का प्रसाद करो है, पैसा कमाने में, मकान बनाने में, फैक्ट्री चलाने में, इन सब मैं निमित्त हूँ ऐसा माने तो भी कोई गाता बोलती है, अज्ञानी का योग और उपयोग नहीं होता। निमित्त भी नहीं, क्योंकि उस योग ज्ञानी तो योग और उपयोग के स्वामी नहीं होते, वो तो उसके ज्ञाता रहते हैं। तो भाई तुम्हें अगर निमित्त बनना हो तो अज्ञानी बने रहना पड़ेगा, बात समझने आती है नरेश भाई? तो यहाँ तो कहता है तुम निमित्त भी छोड़ो, मैं तो प्रसाद करूँगा, फैक्ट्री मैनेज अच्छा मैनेजर रखेंगे और फैक्ट्री बढ़िया बढ़िया चलेगी, व्यापार खूब चलेगा। तो ये तो मिथ्या प्रसाद है, समझ में आया ना? इससे उस बाहर के परमन में कुछ होने वाला नहीं है। प्रसाद से मुक्ति हुई ये न कहकर कर्मों के चलने से मुक्ति हुई अथवा दैव से मुक्ति हुई ये कहना दैव नहीं है। अब होते हैं ना कर्म, तो उनका जो पूरी कर्म शास्त्रों में तो पूरी प्रक्रिया है, कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियों का बंद रुक जाता है और किन की गिरजा होती है, क्या होता है, अपन तो स्कूल जानते हैं। एक बार गुण स्थान में कौन चाहे गुणों का क्षय हो जाता है तो तत्काल अंतर मनुष्य में केवल ज्ञान होता है। कई गुण स्थान में अभी 85 प्रकृतियाँ रह जाती हैं तो उनको क्षय होता है तो सिद्ध हो जाता है। तो कर्मों के करने से हुआ ना, तो कर्म चले ये बात सही है, पर उससे वो पर्याय प्रगत होती ऐसा नहीं है। देखो उसमें भी चैतन्य स्वभाव के पुरुषार्थ का स्वीकार तो साथ में है। जैसे में कर्म क्षय हो रहे होते हैं, आत्मा क्या करता है, कर्मों का क्षय करता है। एक तो कर्म जो है शुद्ध ज्ञान के विषय होते हैं, ठीक है ना, और खेलने के समय में उपयोग कौन सा ज्ञान रूप कर्म होता है, तो श्रेणी के समय खपत श्रेणी के समय उपयोग कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं हो गए हैं तो क्या अवधि ज्ञानी का उपयोग लगाएंगे, क्या मनस्पर ज्ञानी होंगे तो क्या मनस्पर ज्ञान का उपयोग लगाएंगे, केवल ज्ञान तो है नहीं। तो ये शुद्ध ज्ञान का ही कमाल है जो स्वरूप में एकाग्रता नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष है ना, सब हुए सब आवागमन अशेष, तो ये तो सब शुद्ध ज्ञान का कमाल है। और शुद्ध ज्ञान में कर्म दिखते ही नहीं है तो वो क्या तय करेंगे उनको, अरे उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कर्म से उत्तम आदि स्वयमेव होते हैं, सूरज जी ने लिखा, जीव पुरुषार्थ करता है अपने परिणामों का और कर्म के उत्तम आदि स्वयमेव होते हैं। तो निमित्त की प्रधानता से ऐसा बोला जाता है कि जीव ने कर्मों का क्षय, तीन कर्मों का नाश किया, विचार कर्मों का नाश किया, ऐसा बोला जाता है। उसमें भी चैतन्य स्वभाव के पुरुषार्थ का स्वीकार तो साथ में है। जिस जीव को स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है उसका भाग्य भी ऐसा होता है कि कर्म भी कर जाते हैं। तो ऐसा इसमें ऐसी सुनो जहाँ तो भाग्य ने लिया है कर्म वाले सिस्टम को, और लौकिक जगत में जीव कर्म के सिस्टम को भाग्य में लेते हैं या ईश्वर का जो भी हो। लेकिन वर्तमान में जो हम राग से प्रेरित होकर जो प्रयत्न करते हैं जगत उसको प्रकाश देता है। कहीं पर दुकान जाना, दुकान खोलना, माल बराबर पूरा उन्हें रखना, हिसाब किताब सही रखना, ग्राहकों से अच्छे मीठा व्यवहार करना है, तो ये सब प्रयास किए रहते हैं। इसको जगत प्रसाद कहता है, जबकि ये बहिरंग निमित्त है। ये पैसा कमाने में जो मेहनत की जाती है वो बहिरंग निमित्त है, और कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। जीव का तो वर्तमान में उसमें कोई प्रसाद है ही नहीं, जो जो उसने विकल्प मात्र किया है उसे भले उपचार से प्रसाद कहो और उससे कुछ होता नहीं। क्या बोला, हमारे विकल्प कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यय से ही बोझा होता। ये है स्थिति नहीं, कर्मों को टालने के लिए अलग से प्रसाद नहीं करना पड़ता। किसी स्थिति में ये अपेक्षा ग्रहण करना कि कर्मों के चलने से मुक्ति हुई ये दैव नहीं का कथन है, और पुरुषार्थ से मुक्ति हुई ये किसका पुरस्कार नहीं का कथन है। पुरुषार्थ में बोलोगे पुरस्कार बोलोगे। यद्यपि यहाँ मुक्ति रूपी कार्य की चर्चा है, तथापि बाह्य संयोग प्रयोग के बारे में भी इन नयों का प्रयोग समझना चाहिए। जो चर्चा अभी अपन कर चुके बाह्य संयोगों की प्राप्ति के लिए किए गए योग उपयोगात्मक प्रयत्न को व्यवहार से पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए तो व्यवहार में प्रबल है जिना समझ में आया कि वास्तव में निश्चय से परमार्थ से जो चीज है ही नहीं, लेकिन जगत में जैसा ही बोला जाता है, जैसा ही सोचा जाता है, दुनिया उसी के अनुसार व्यवहार करती है। तो जिना दम चलो भाई चीज है, इस व्यवहार में अगर खाता अपने आने का शुरू है, जैसा ऐसा है नहीं, निमित्ता की अपेक्षा उपचार से कहा जाता है। तो कार्य हो गए पुद्गल का, और पुरुषार्थ हो गए जीव में। जीव के पुरुषार्थ से हुआ ना, पैसा हमने कमाया ना पुरुषार्थ से, तो कार्य किसमें हुआ, पुद्गल में हुआ। रोटी बनी तो रोटी का कार्य किसमें हुआ, पुद्गल में, और पुरुषार्थ किसने किया, भाई ने। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, कहीं पुरुषार्थ है और कहीं कार्य है, ऐसा कैसे होगा। व्याप्त व्यापक भाव नहीं है, कर्ता कर्म भाव नहीं है, तो पुरुषार्थ कहाँ से आ गए। तो भाई ने कुछ किया कि नहीं किया, उसने अपने योग उपयोग रूप परिणमन किया। और ज्ञानी भाई हो गए देवलाली की समय दृष्टि, तो योग और उपयोग से ढेर ज्ञान करेगी, और अवसर देवलाली कला मतलब देवलाली का मतलब देवलाली से नहीं है, ये आउट ऑफ सत्य ज्ञान वाली होगी तो अभिमान करेगी। मैं इतना सुबह से शाम तक आज के मेहमान आ गए और जना लोगों को खिलाया पिलाया, मैंने किया हूँ करूँ हूँ करूँ, ये जो अज्ञान का वो उसमें रोटी में पुरुषार्थ नहीं करेगी, वो अज्ञान रूप परिणमन का पुरुषार्थ करेगी, विपरीत पुरुषार्थ। देखो ये पंडित साहब की पंक्तियां भी है, पापो जैसे चार जैसे है नहीं चाहने पर भी हो, पुण्यो जैसे चार जैसे है सहज पने मन बांधे हो। पाप का उदय होगा तो जो आप नहीं चाहोगे अनित्य संयोग वे होंगे, उन्हें दूर करना चाहोगे तो भी वे होंगे। और पुण्य का उदय होगा तो अनुकूल संयोग नहीं चाहोगे तो अपने आप मिलेंगे, ऐसा है। उक्त पंक्तियों ने संयोग योग में कर्मोदय की प्रधानता बताई। बाह्य पदार्थों के संयोग योग में उपादान कारण तो उन पदार्थों की सत समय की योग्यता है। संयोग होना तो पदार्थ नजदीक आना, वास्तव में कईयों को मिलते हैं ये भी असद्भुत व्यवहार का कथन है। फिर देवलाल जी बंगला मिल गया, मिल गया मैंने क्या हुआ तुम्हारे अंदर घुस गया असल है मलाड का फ्लैट तुम्हारे अंदर घुस गया क्या मिलने का क्या है? एक कल्पना खड़ी हो जाती है कि हमको मिल गया। वास्तव में बंगला बंगले में है, तुम तुम्हारे में हो, राग राग में है, चेतन चेतन में है, सब तत्व अपने अपने में स्वतंत्र है। अतः पुरुषार्थ भी उन पदार्थों का उनमें ही है। क्या जिस पदार्थ का प्रणमन हो रहा है उसका पुरुषार्थ उसमें ही है। हमारा प्रयत्न तो उन कार्यों में निमित्त मात्र है जिसे उपचार से पुरुषार्थ कहते हैं। ये इतना जरूरी है दुनिया तो इसको ही पुरुषार्थ समझती है ना, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अरे भाग्य से कार्य होता हुए जीव को पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। हम तो मात्र अपने प्रयत्न रूप कार्य का विकल्पात्मक पुरुषार्थ करते हैं। अगर आगम की शैली में करता कहा जाए तो दो उदाहरण इसमें दिए छठवें पॉइंट में, एक वर्तमान युग का और एक भारतीय राजनीति का। पद्म पुराण में शंभु कुमार द्वारा सूर्य हाथ छवि की प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ की घटना का वर्णन आपको मालूम नहीं है कि कौन सी घटना? ऐसा था, रावण का बहन का बेटा भांजा, वो बांस का जो झुरमुट होता ना ग्रस्त, उसके बीच में बैठ के और मंत्र साधना करता था। काय के लिए कि मुझे एक दैवी खड़ग जो है, चक्र है, जो हथियार है वो मिल जाए मंत्र से तो मैं शत्रुओं पे विजय प्राप्त करूं। 12 वर्ष तपस्या की मंत्र जाप कर रहे वो मेरी क्लीन क्लीन कृष्ण से बोलता हुआ, और उसकी माँ रो जाना उसके लिए भोजन लेके आती। अब ये तो उधर की घटना है, इधर ये पधारे अपने बलभद्र और नारायण, राम और लक्ष्मण और सीता ये पधारे, तो उन्हें वहीं उसी एरिया में पहुंच गए, वहाँ उन्होंने कुटी बनाई, राम जी से कहा आप रेस्ट करो, मैं थोड़ा माहौल देख के आता हूँ क्या स्थिति है, क्योंकि जरा राक्षसों का आप उस समय भी आतंकवादी बहुत होते थे, लेकिन वो जनकर जाते थे, राक्षस लोग होते थे, मनुष्य में भी होते थे पर परेशान करने वाले होते थे। तो देखा तो वो जिस सूर्य हाथ खड़े की प्राप्ति के लिए मंत्र तो वो कर रहा था और आ गया लक्ष्मण के हाथ, तो लक्ष्मण को मिल गया। लक्ष्मण ने सोचे ही नहीं, रमुकार मंत्र भी नहीं पढ़ा उसके लिए, कुछ भी नहीं किया और लक्ष्मण के हाथ में आ गए। और बात यहीं तक क्लोज हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, और मामला आगे बढ़ गया। लक्ष्मण ने सोचा ये कहाँ से आया, हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं, बड़ा तेज दिख रहा है, बड़ी चमक है, देवोपनी देवोपनी मंत्र से सिद्धता है ना, तो जरा देखें क्या इसमें कितना पावर है, इसमें दीदी गुण का परिणमन कैसा तेज है, चला दिया। और जो बेचारा 12 वर्ष से मेहनत कर रहा था उसका सिर पर ये मूल घटना थी जिसके आधार पर सीता हरण हुआ और सारी रामायण आगे बढ़ी। अब बोलो प्रयत्न कितने किया और फल किसको मिला, ये व्यवस्था है जगत की। और अपने आप ही इसमें लिखा है, देखो लक्ष्मण को बिना किसी प्रयत्न के, बिना इच्छा के वह खड़ग प्राप्त हो गया, और वही खड़ग दुर्भाग्यवश शंभु कुमार की मृत्यु का निमित्त बना, उसका नाम शंभु कुमार। वर्तमान में सन 2004 में मैंने संधि दिया, ताकि 20 साल बाद की किताब पढ़ी जाएगी तो लोगों को सन से वो घटना याद आ जाएगी। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह बिना किसी इच्छा और प्रयास के प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें सचमुच पता नहीं था कि मुझे बनना है, और वो तो RBI के गवर्नर रहे, वो तो ऑफिसर आदमी थे, वो बिल्कुल गैर राजनीतिक और बहुत सज्जन आदमी है, हैं? तो उनने विकल्प भी नहीं किया, जैसे दूसरे लोग जोर तोड़ लगा रहे थे, सोनिया जी का था सब, सोनिया बनेगी और देश भर में खूब विरोध हो रहा था कि हम नहीं बनने देंगे। तो उनसे ये कहा कि आप हमारे साथ में प्रेसिडेंट हाउस में आपको चले, उसको मैं बताया हूँ कि आपको हमारे साथ में आना है, तब उन्हें क्लिक हुआ क्या कहीं मेरा नंबर तो नहीं देने वाला है और लग गया उनका नंबर। और 10 दिन तक देश में एक सज्जन और हितमित्रीय भारतीय प्रधानमंत्री को होगा देखो वर्तमान समाप्त भावों द्वारा बांधे गए पुण्य पाप कर्म आगामी संयोग वियोग में दैव या भाग्य बनकर उदय में आगे वर्तमान समाप्त जो वर्तमान के कर्म है उनमें पूर्व के भाव नए क्रमांक 36 से 33 तक कहे गए चार जोड़ों का आत्महित में योगदान का विवेचन माननीय डॉक्टर हुकुम सिंह भाईल ने परम भाव प्रकाशक में चक्र पृष्ठ 324 में किया है। ये पैराग्राफ बहुत बढ़िया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जब कार्य होता है तब ये पांचों ही समवाय नियम से होते हैं और उसमें उक्त 8 नयों के विषय भूत आत्मा के 8 धर्मों का योगदान भी समान रूप से होता है। तात्पर्य ये है कि आत्मा की सिद्धि के संपूर्ण साधन आत्मा में ही विद्यमान है, उसे अपनी सिद्धि के लिए यहाँ वहाँ झांकने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्थिति ये है कि जब परम पारिणामिक भाव रूप नियत स्वभाव ये स्वभाव में आया के आश्रय से भगवान आत्मा पर्याय रूप अन्यत स्वभाव को संस्कारित करता है तो अन्यत में भी आया और अस्वभाव में भी आया है। तब स्वकाल में ये काल में आया, कर्मों का अभाव होकर ये अकाल में आया, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य ये है कि परम पारिणामिक भाव रूप चकाली ध्रुव आत्मा को केंद्र बनाकर जब श्रद्धा ज्ञान चार से परिणित होते हैं तब ज्ञानावरणादि कर्मों का अभाव होकर अनंत सुख स्वरूप सिद्ध दशा प्रकट होती है। उसमें ही आप धर्म आत्मय या 5 समवाय समाप्त हो जाए। ये 5 समवाय संबंधी चर्चा अपने थोड़ी थी, अभी ईश्वर अनिश्वर की भी संकेत में करेंगे। तो कर्त्री अकर्त्री के बारे में विशेष चर्चा जो है आज लास्ट है ना रुपी भाई, हाँ तो कर्त्री अकर्त्री के ऊपर फोकस करेंगे अभी यही विराम लेंगे।